ओम नमस्ते जी। द्वितीय श्रव्य कणिका वैदिक जीवन भारती। वेद शब्द विद धातु से निकला है। विद धातु के चार अर्थ हैं। प्रथम है ज्ञान, दूसरा है विचार, तीसरा है सत्ता, चौथा है लाभ। और ये पाणिनीय धातु पाठ के अंदर वेद शब्द जिन धातुओं से बनता है उसके ऊपर विचार करने से हमको ये मिला अर्थ। विद ज्ञाने, विद विचारे, विद सत्तायाम और विद लरी लाभे। चार चीजों को हमने अपने जीवन में समझना है। सृष्टि में जीवन हेतु ज्ञान, विचार, सत्ता और लाभ आवश्यक हैं। और वेद वह ज्ञान है जो विचार में, सत्ता में तथा लाभप्रद है। ऐहिक ऐश्वर्य एवं मोक्ष लाभ हैं, जिसको ऋषियों ने भोग और अपवर्ग नाम से अभिव्यक्त किया है। लौकिक जीवन हमारा समृद्ध हो और जन्म मरण के चक्र से हम छूटें या दुखों से हम नितांत छूट जाएं, ये मोक्ष है। प्रकृति, जीव, ब्रह्म तीन सत्ताएं हैं। प्रकृति, जीव, ब्रह्म का ज्ञान विज्ञान, ऐश्वर्य एवं मोक्ष के अंतर संबंधों का चिंतन इसका विचार है। हम प्रकृति के स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को जाने, यानी संसार को जाने, अपने आप के स्वरूप को जाने और जगन्नियंता ईश्वर के भी स्वरूप को जाने। तीनों के यथार्थ स्वरूप को जानते हुए लौकिक ऐश्वर्य को समृद्धि पूर्वक किंतु त्याग पूर्वक प्राप्त करके, त्याग पूर्वक भोगते हुए मोक्ष के प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर सके, इसके लिए जो चिंतन होता है वो है विचार। इन सबका यथावत स्वरूप ज्ञान है और वेद इस संदर्भ में ज्ञान है। कहना ये चाह रहे हैं कि हमें वेदवित होना चाहिए। तो तीनों सत्ताएं, प्रकृति, जीव और ब्रह्म, इनका ज्ञान हम प्राप्त करें और जो है इनसे लाभ उठाएं, अर्थात इनके पृथकत्व को जानें। ये मोक्ष के लिए चिंतन विचार है। ब्रह्म की सत्ता पृथक है, संसार की सत्ता पृथक है और आत्मा की सत्ता पृथक है। आत्मा परमात्मा दोनों स्थाई हैं। आत्मा परमात्मा का परस्पर संबंध स्थाई है। वस्तुतः ये बहुत बड़ा अज्ञान है जो हम नॉर्मल जीवन में जीते हैं। ऋषि दयानंद ने लिखा अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, लेकिन हम इस संदर्भ में अविद्या को ही जीते हैं। जो अस्थाई जगत है उसको स्थाई बनाने की चेष्टा में लगे हुए रहते हैं और जो स्थाई संबंध है ईश्वर के साथ हमारा, उसको तो दिन भर भुलाए रहते हैं। तो इस संदर्भ में वेद तीनों सत्ताएं, अनादि तीनों सत्ताएं, प्रकृति, जीव, ब्रह्म यानी संसार, आत्मा और जगन्नियंता ईश्वर यानी साध्य, साधक और साधन, इनका त्रिविवेक प्राप्त करना ज्ञान है और दुखों से छूटने के लिए चिंतन करना, पुरुषार्थ करना विचार है और शुद्ध ज्ञान इनका प्राप्त होना लाभ है। तो इस तरह से ये वैदिक जीवन जो है वेदमय होना चाहिए, ये बात वो लिख रहे हैं। आगे वेद के स्वरूप को बता रहे हैं कि ऋग्वेद के दशम मंडल के 71वें सूक्त के पहले मंत्र के माध्यम से, मंत्र में कई सारे शब्द आए हैं। प्रथमम, वाचो अग्रम, नामधेयम दधानाः, श्रेष्ठम, अरिप्रम, निहितम गुहा तथा प्रेरणा आविहि। इन शब्दों के द्वारा हमको पता चलता है कि सृष्टि में वेद आदि प्रथम है। संसार में बिना ज्ञान प्राप्त किए मनुष्य सीख नहीं सकता, बिना सिखाए उसको कुछ भी नहीं आ सकता। इसका कारण है मनुष्य का ज्ञान नैमित्तिक है। मनुष्यतर जितने भी प्राणधारी हैं उनमें ज्ञान स्वाभाविक पाया जाता है। किसी भी भया पक्षी ने अपने बेटे बेटी को सिखाया नहीं कैसे घर बनाना, लेकिन जब वो उड़ने में सक्षम हो गया, तिनका उठा उठा करके स्वयं अपना घर बुनने लगा। किसी गाय या कुत्ते आदि प्राणी जो पानी में तैर सकते हैं, इन्होंने अपने बच्चों को तैरना नहीं सिखाया, बिना सिखाए ही वो पानी में तैर सकते हैं। हम देखते हैं किसी भी उसको मकोड़े कहते हैं, जाला बुनना नहीं सिखाया, मकोड़ा जाला बुनती है। अब आप देखिए वो बच्चा बिना सिखाए ही अपना जाला खुद बुन लेता है आगे। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य का ऐसा नहीं है, मनुष्य को हर ज्ञान सीखना पड़ता है, बिना सिखाए इसको कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जिन लोग बच्चों को चाइनीज नहीं सिखाई गई, जैसे भारत में रहने वाले बच्चे हैं, उनको ताउम्र चाइनीज भाषा नहीं आ सकती जब तक नहीं सीखेंगे, और चाइना के बच्चों को हिंदी नहीं आ सकती, संस्कृत नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने वो नहीं सीखी। ऐसे ही ज्ञान विज्ञान की कितनी ही शाखाएं हैं। एक डॉक्टर को इंजीनियरिंग नहीं आती और एक इंजीनियरिंग को चिकित्सा नहीं आती, क्योंकि उन्होंने वो सीखी नहीं। कोई भी ज्ञान बिना सीखे मनुष्य नहीं सीख सकता, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान नैमित्तिक है। तो प्रश्न ये उत्पन्न हुआ, आदि सृष्टि में जो पहला मनुष्य था उसको किसने सिखाया? बिना सिखाए तो ये सीख नहीं सकता। हमने जो ज्ञान विज्ञान सीखा अपने पूर्वजों से सीखा, तो जो सबसे हमारे पहले पूर्वज थे उनको किसने सिखाया? तो उनको ईश्वर ने सिखाया, और वही ज्ञान वेद है। और यही बात वेद भी कह रहा है, प्रथमम, सृष्टि में आदि प्रथम है, तथा समस्त भाषाओं का आदि स्रोत है वाणी प्रथम। हम देखते हैं संस्कृत भाषा में है वेद, चारों के चारों वेद की भाषा संस्कृत है, और संस्कृत भाषा किसी मनुष्य विशेष की या स्थान विशेष के लोगों की नहीं है, पूरे धरतीवासियों की है, मनुष्य मात्र की भाषा संस्कृत है। और सभी भाषाओं का आदि स्रोत है, इसका प्रमाण भी दिया जा सकता है। दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं है आज विद्यमान जिसमें संस्कृत भाषा के शब्द न मिलते हों। लगभग लगभग सारी भाषाओं में ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा के शब्द मिलते हैं, अथवा कुछ बिगाड़ करके प्रयोग में लिए गए अपभ्रंश रूप में भी संस्कृत भाषा के शब्द मिलते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा में दुनिया के अन्य भाषाओं के शब्द नहीं मिलते। इससे पता चला कि संस्कृत भाषा न केवल आदि भाषा है विश्व की, विश्व मानव की, बल्कि दुनिया के अन्य भाषाओं की जननी भी है। तो इससे पता चलता है कि वेद जो है समस्त भाषाओं का आदि स्रोत है, और वाणियों में प्रथम वाणी है जो ईश्वर द्वारा मनुष्य को सिखाई गई। बिना सिखाए मनुष्य सीख नहीं सकता। आदि सृष्टि में ईश्वर यदि न सिखाए तो यह मनुष्य को ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये उदाहरण देखे गए हैं, सुपरीक्षित हैं, कि जंगल में यदि छोड़ दिया जाए मनुष्य के बच्चों को और वो जानवरों के साथ पले बढ़े, तो जानवरों जैसी ही हरकत करते हैं, उनके जैसे ही जिस जानवर के साथ वो पलेगा वो जानवर जैसा वाणी का प्रयोग कर रहा है वैसे ही वो मनुष्य भी वाणी का प्रयोग करेगा, उसके जैसे ही हरकतें करेगा, उसकी बुद्धि अविकसित रहेगी, ये देखने में आया। फिर तीसरी बात आई, समस्त सृष्टि पदार्थों के नामों का द्योतक, यानी ईश्वर ने वेदों में जो है सभी पदार्थों का जो हम मनुष्यों के लिए जरूरत है इस सृष्टि में प्रयोग के लिए, उन सब का बोध वेद में कराया है, श्रेष्ठ व्यापक ज्ञान। पांचवी बात आई, विश्व मात्र हेतु सार्थक, यानी इसमें किसी भाषा विशेष को मानने वाले, प्रांत विशेष को मानने वाले, देश विशेष को मानने वाले, वर्ग विशेष को मानने वाले, संप्रदाय विशेष को मानने वाले व्यक्तियों तक ये सीमित नहीं है, तो ये व्यापक है और श्रेष्ठ ज्ञान है। विश्व मात्र हेतु सार्थक और गहन गुहा अंतस में निहित ब्रह्म प्रेरणा सिद्धि से अनुभूत, ये सात बातें हमको पता चलती हैं वेद के विषय में, जो ऋग्वेद के दशम मंडल के 71वें सूक्त के प्रथम मंत्र में आया है। जो प्रथमम वाचो अग्रम नामधेयम दधाना श्रेष्ठम अरिप्रम और निहितम गुहा तथा प्रेरणा आविहि इन शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त है। आज की श्रव्य कर्णिका को यहीं विराम देते हैं, आगे की बातें आपको कल बताने का प्रयास करेंगे। इति ओम शम।